वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रोताओ, हमें विश्वास है कि हमारे इस बाइबल अध्ययन से आपको अत्यधिक लाभ मिल रहा है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि ये पुस्तक आपके आत्मिक जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में सम्मिलित हो और सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब परमेश्वर के वचन में रहकर कुशल पूर्वक हैं और अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आज जब हम फिर से एक बार परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए बैठे हैं, तो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवादित हैं कि आपने यह समय दिया है कि हम आपके वचन को सीखें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ की परिपूर्णता दीजिए, ताकि जो वचन आज हम सीखते हैं हमारे जीवन में कार्यरत होने पाए। प्रभु, आप अपने वचन के अनुसार हमें चलना सिखाइए, ताकि हम आपकी निकटता में रहकर आपको महिमा दे सकें। इस समय फिर से एक बार हम आपकी सहायता चाहते हैं, आप हम सबकी सहायता करें। प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हम देख रहे थे कि मूसा इसराइल की इस नई पीढ़ी को समझा रहा था कि वे अपने पितरों अर्थात पुरखाओं की नाई परमेश्वर पर अविश्वास प्रदर्शन न करें, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करके आशीषें पाएं और प्रतिज्ञा के देश में बसे रहें। वे कभी न भूलें कि परमेश्वर यहोवा एक ही है और वह उनसे प्रेम करता है। वह अब तक विश्वास योग्य रहा है और भविष्य में भी विश्वास योग्य बना रहेगा। मेरे मित्रों, यह उसके लिए एक महान प्रोत्साहन का कारण है। परंतु यदि उन्होंने परमेश्वर का त्याग किया, तो वह उन्हें प्रतिज्ञा के देश से बाहर कर देगा। अध्याय 8 में मूसा धार्मिक और राष्ट्रीय नियमों का पुनरावलोकन करेगा और यह व्याख्यान अध्याय 21 तक चलेगा। अतीत की स्मृति उन्हें आज्ञाकारिता का प्रोत्साहन देती है। आइए हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। मेरे मित्रों, यह नई पीढ़ी यर्दन नदी के पूर्वी तट पर उपस्थित है और बड़ी आशा से प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने की तैयारी में है। मूसा उन्हें प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश की तैयारी करवाते हुए प्रोत्साहित कर रहा है कि वे परमेश्वर के आज्ञा पालक में चूक न करें। तब हम आगे पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8 अध्याय उसके 2 पद में, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा वा नहीं। मेरे मित्रों, परमेश्वर चाहता है कि वे अतीत को सदा स्मरण रखें। उन्हें देखना समझना है कि परमेश्वर उनकी देखभाल करता रहा है और परीक्षाओं द्वारा उन्हें परीक्षण देता रहा है। परमेश्वर चाहता है कि हम भी अपना अतीत स्मरण रखें। पौलुस ने विश्वासियों को प्रोत्साहित करते हुए फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हमें सदा स्मरण रखना है कि परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की है और हमें आशीषें दी है। क्या यह आपके जीवन में सच नहीं है? क्या आप कह नहीं सकते हैं कि परमेश्वर आपको यहां तक लाया है? यदि उसने यह किया है तो क्या वह आगे भी ऐसा नहीं करेगा? मेरे मित्रों, अतीत को स्मरण रखने से हमें प्रोत्साहन मिलता है, यह हमें भविष्य के लिए आश्वासन देता है। परमेश्वर ने इसराइल को जंगल में क्यों परखा? उन्हें दीन बनाने के लिए और उनके मन के विचार प्रकट करने के लिए। इससे हमें समझ में आता है कि परमेश्वर हमें भी परेशानियों में से क्यों निकालते हैं, अर्थात हमें निकलने देते हैं। कभी कभी वह हमें बहुत गर्म मिट्टी में डाल देता है। क्यों? हमें परखने के लिए और हमें दीन बनाने के लिए। यह अंकिचन मनुष्य घमंडी है, अहंकारी है आत्माभिमानी है और साफ साफ कहें तो वह घृणित है। इस अंकिचन मनुष्य के गर्व और अहंकार को देखो कि वह पृथ्वी पर कैसे रहता है। अतः परमेश्वर अपने लोगों को कष्टों में डालता है कि वे दीन बने और सिद्ध हों। मेरे मित्रों, आप तो जानते हैं कि परखने से ही धातु सिद्ध होती है। इसी प्रकार परख द्वारा ही परमेश्वर की संतान की सच्चाई का भी पता चलता है कि वह परमेश्वर की है या नहीं। आज कलीसियाएं समृद्ध सदस्यों से भरी हुई हैं, जिन्हें कभी परखा नहीं गया है। मैं नहीं कह सकता कि वह सच्चे हैं या नहीं। वह मनुष्य जो परखा जा चुका है उसमें विश्वास किया जा सकता है। हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8:3 में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, उसने तुमको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे न तो तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उनसे वह जीवित रहता है। हमारे प्रभु ने इस पद का संदर्भ शैतान को देकर उसे चुप कराया था, जिसे हम मत्ती के सुसमाचार 4:4 में और लूका 4:4 में पाते हैं। यदि प्रभु यीशु ने इसका संदर्भ नहीं दिया होता तो हम इसके महान आत्मिक सबक से चूक जाते। परमेश्वर हमारे साथ भला रहा है, उसने हमें अनेक प्रकार की सांसारिक आशीषें दी हैं। इसमें मुख्य आत्मिक शिक्षा यह है कि परमेश्वर हमें सांसारिक आशीषें इसलिए देता है कि हम यह जाने कि आत्मिक धन भी है, जिसे हम परमेश्वर का वचन कहते हैं। आज परमेश्वर की संतान के लिए परमेश्वर का वचन ही वास्तविक धन है। हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8:4 में आगे पढ़ते हैं, इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और न तेरे पांव फूले। मेरे मित्रों, यह एक विचित्र परंतु अद्भुत कथन है। कल्पना कीजिए कि एक जोड़ी कपड़े वर्षों पहनने के बाद भी न फटे। मैं जानता हूं कि स्त्रियों को यह बात अच्छी नहीं लगेगी। पत्नियों को तो अपने पति से हर साल नए कपड़े चाहिए होते हैं और पति यही कहते हैं कि जो कपड़े उनके पास हैं वे तो नए ही हैं। मेरे मित्रों, इस्राएली स्त्रियां 40 वर्ष तक एक ही वस्त्र पहने हुए थी, तो वे तो पुराने फैशन के हो गए होंगे। जंगल में तो फैशन बदला भी नहीं होगा, अतः उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ा होगा। यह वास्तव में आश्चर्यकर्म ही था। न तेरे पांव फूले, मुझे एक डॉक्टर ने बताया जो उस क्षेत्र में सेवा कर रहा था कि वहां के लोगों में विटामिन की कमी होती है और परिणाम स्वरूप उन्हें बेरी बेरी रोग हो जाता है, जिसका एक लक्षण है पांव की सूजन। अब आप सोचे कि इसराइल को जंगल में भी पूरे विटामिन मिल रहे थे, अर्थात उन्हें पोषक एवं संतुलित भोजन मिल रहा था। उन्होंने 40 वर्ष क्या खाया? मन्ना। परमेश्वर ने उन्हें मन्ना खिलाया। मन्ना चमत्कारी भोजन था, उसमें शरीर के लिए आवश्यक सब तत्व थे। मेरे मित्रों, आत्मिक मन्ना परमेश्वर का वचन है। यह एक अद्भुत भोजन है। इस भोजन से आपकी सब आवश्यकताएं पूरी होती हैं। मुझे जो पत्र मिलते हैं उनसे इस तथ्य की पुष्टि होती है और मैं अचंभा करता हूँ। कोई लिखता है कि मेरे प्रचार को सुनकर उन्हें मन की शांति प्राप्त हुई। कोई यह भी लिखता है कि वह पाप में था और परमेश्वर से दूर हो गया था, वह शिथिल और उदासीन हो गया था, और हमारा संदेश सुनकर, परमेश्वर के वचन को सुनकर वह पुनः परमेश्वर के पास आ गया है। कोई लिखता है कि वचन सुनकर उसने उद्धार प्राप्त कर लिया है। आपने देखा मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन पढ़ने के बाद आपके पांव नहीं फूलेंगे। बाइबल आपके वैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, चाहे वे कैसी भी क्यों ना हो। यही मानना है। इसलिए यदि इसराइल परमेश्वर की सेवा करेगा तो परमेश्वर उसे समृद्धि प्रदान करेगा। हम व्यवस्था विवरण के पुस्तक 8:5-9 में पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकलते हुए गहरे गहरे स्रोतों का देश है। फिर वह गेहूं, जौ, दाखलताओं और अंजीरों और अनारों का देश है, और तेल वाली जलपाई और मधु का भी देश है। उस देश में अन्न की महंगी न होगी और न उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। वहां के पत्थर लोहे के हैं और वहां के पहाड़ों में से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा। मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर ने विश्वासियों से ऐसी प्रतिज्ञा नहीं की है। आज एक अनुचित धारणा प्रचलित है, परंतु आप ध्यान रखें कि यह धारणा की निष्ठावान विश्वासी को परमेश्वर के समृद्ध प्रदान कराता है, सर्वदा अनुचित भी है। मेरे मित्रों, यह सच नहीं है। परमेश्वर ने इसराइल को अवश्य समृद्धि की प्रतिज्ञा दी, परंतु विश्वासियों को सांसारिक समृद्धि की प्रतिज्ञा नहीं दी गई है। मैं जानता हूं कि कुछ विश्वासी हैं जो सफल व्यापारी हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने परमेश्वर को अपना साझेदार बनाया और परमेश्वर ने उन्हें बहुत ऐसे आशीषें दी। परमेश्वर ऐसा करता है और हम इस कारण उसकी स्तुति करते हैं, परंतु यह उसकी प्रतिज्ञा नहीं है। मेरे मित्रों, विश्वासियों की प्रतिज्ञा एफिसियों 1:3 में विहित है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। उसने हमें आत्मिक आशीषों की प्रतिज्ञा दी है। नए नियम में एक भी पद ऐसा नहीं है जो परमेश्वर की संतान के लिए सांसारिक समृद्धि की प्रतिज्ञा दर्शाता है। मेरे मित्रों, मैं यह कहना चाहता हूं कि यद्यपि परमेश्वर ने सांसारिक आशीषों की प्रतिज्ञा नहीं की है, वह सांसारिक आशीष देता है। परमेश्वर कुछ के साथ ऐसा करता है और ऐसे कुछ विश्वासी हैं जिन्हें परमेश्वर ने आर्थिक आशीषों से समृद्ध किया है और वे हमारे रेडियो कार्यक्रम में महान सहायक सिद्ध हुए हैं। दूसरी ओर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज परमेश्वर की अति प्रिय संतानों में अनेक हैं जिन्हें सांसारिक समृद्धि प्राप्त है ही नहीं, परंतु उनके पास आत्मिक आशीषों का भंडार है। वे सबसे अधिक प्रसन्नचित्त मनुष्य हैं और परमेश्वर के लिए सबसे अधिक कार्य करते हैं। वे मुझ गरीब प्रचारक के लिए तथा संसार में मसीह के सेवा कार्य के लिए आशीष का कारण बने हैं। मेरे मित्रों, पुराने नियम में इसराइल राष्ट्र और नए नियम में कलीसिया में जो सबसे बड़ा अंतर है वह है परमेश्वर ने इसराइल से सांसारिक आशीषों की प्रतिज्ञा की है और कलीसिया से आत्मिक आशीषों की प्रतिज्ञा की है। यदि आप इस विषय को उचित परिप्रेक्ष्य में रखें तो दुखी होने से बचेंगे और परमेश्वर की अनेक संतान ईश्वर त्याग की अपेक्षा आनंदित रहेंगी। मेरे प्रियो, यदि आपकी आर्थिक स्थिति निम्नतम है तो आत्मिक आशीषों को गिने, जिससे कि आप उसकी प्रतिज्ञा के धन का आनंद ले पाएं। हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8:10-11 में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और तू पेट भर खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसका धन्य मानेगा। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनका मानना छोड़ दे। वह आने वाले समृद्धि के समय के संबंध में उन्हें और चेतावनी देता है। तब हम आगे पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 8:14-16 में, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है जहां तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा ही भला करे। मेरे मित्रों, भावी हजार वर्ष के युग के उत्तरार्थ में परमेश्वर इसराइल को सांसारिक आशीषें देकर एक अगुआ राष्ट्र बनाएगा। मेरे मित्र, परमेश्वर ने कलीसिया से यह प्रतिज्ञा नहीं की है, अतः इस प्रतिज्ञा को अपने लिए न समझें। प्रभु यीशु ने कहा है कि हमारे लिए स्थान तैयार करने स्वर्ग में गया है और वह आकर हमें ले जाएगा कि जहां वह है वहां हम भी रहें। परमेश्वर की संतान की आशा यही है कि वह हमें इस संसार से निकालकर ले जाने के लिए आ रहा है। इसराइल की आशा इस संसार में है, यह अंतर मुख्य महत्व का है। यदि आप इन प्रतिज्ञाओं को मिला देंगे तो आप उलझन में पड़ जाएंगे। परंतु बहुत से ऐसे धर्म ज्ञानी हैं कि यही चूक करते हैं, वे बाइबल की प्रतिज्ञाओं को एक दूसरे से जोड़ देते हैं। यदि बाइबल को ज्यों का त्यों देखा जाए तो प्रकट होगा कि परमेश्वर प्रतिज्ञा करने में स्पष्टवादी है। हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8 अध्याय उसके 17 और 18 पद में पढ़ते हैं, और कहीं ऐसा न हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसे पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। मेरे मित्रों, इसराइल यदि प्रतिज्ञा के देश में समृद्ध हो तो यह उनकी आज्ञाकारिता का प्रमाण है, और यदि वह समृद्धि से वंचित हो तो स्पष्ट है कि वह परमेश्वर के आज्ञा पालन से चूक कर रहा है। आज के इसराइल को देखकर आप ही निष्कर्ष निकाल लें। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसके 19 और 20 पद में हम पढ़ते हैं, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उनकी उपासना और उनको दंडवत करेगा, तो मैं आज तुमको चिता देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करने पर है, उन्हीं की नाय तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन न मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यह उन्हें परमेश्वर की चेतावनी है। वह उनसे आशीषों की प्रतिज्ञा करता है, परंतु शर्त यह है कि उसकी आज्ञाएं माने, वे उस पर चलें। यदि उन्होंने आज्ञा नहीं मानी तो परमेश्वर उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा उसने उन जातियों के साथ किया था जो इसराइल से पहले वहां वास करती थी। और सत्य तो यह है कि परमेश्वर ने उन्हें अधिक कठोर दंड दिया। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि इसराइल को अधिक प्रकाशन प्राप्त था। प्रकाशन परमेश्वर के समक्ष उत्तरदायित्व का बोझ प्रदान करता है। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 8 समाप्त होता है, और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 9 से जारी रखेंगे, और इसका विषय इस प्रकार से है, परमेश्वर इसराइल को जानता था, उनकी अतीत अच्छा नहीं था। परमेश्वर इस नई पीढ़ी को उनके पितरों का इतिहास सुना रहा है और उनका इतिहास अच्छा नहीं था। परमेश्वर ने उनका उद्धार इसलिए नहीं किया था कि वे भले थे, उसने उन्हें इसलिए नहीं बुलाया था कि वे एक विशेष जाति थे, वे कभी नहीं थे। परमेश्वर ने हमारा उद्धार इसलिए नहीं किया है कि हम में कोई विशेषता थी, या हम भले थे, या हम किसी से अच्छे थे। परमेश्वर जिन मनुष्यों का उद्धार करता है वे बुरे ही होते हैं। मुझे एक घटना याद आती है। मैं अपनी कलीसिया के सदस्यों के पीछे चल रहा था। हम एक पार्क से होकर जा रहे थे और वहां एक पुरुष उनसे पैसे मांगने लगा। हमने अपने सदस्यों से निवेदन किया कि वे ऐसे मनुष्यों को मिशन में भेज दें जहां उनकी सहायता की जाए, परंतु इस व्यक्ति को सहायता की लालसा नहीं थी। उसे शराब खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे। जब मैं उसके निकट पहुंचा तो वह कहने लगा कि वे मनुष्य जो आगे चलकर आराधनालय में गए हैं, वे सोचते हैं कि वे अन्यों की तुलना में भले मनुष्य हैं। मैंने उससे कहा, यह बड़ी रोचक बात है कि आपने कहा कि वे सोचते हैं कि वे अन्य लोगों से अच्छे हैं। मैं उन्हें जानता हूं और मुझे वह दिन भी याद है जब वे मसीह के पास आए थे। क्या आप जानते हैं वे क्यों आए? वह मुझे आश्चर्य से देखने लगा। मैंने कहा, वे इसलिए मसीह के पास आए कि वे सोचते थे कि वे सबसे बुरे हैं। वे सोचते थे कि वे पापी हैं और उन्हें उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, और यही कारण था कि वे मसीह के पास आए। आपने देखा, उसके मन में भी वही विचार था जो अन्यों के मन में होता है, कि कलीसिया उन लोगों का समूह है जो यह सोचते हैं कि वे अन्यों से अधिक अच्छे हैं। यह कुछ लोगों के लिए सही भी हो सकता है। मेरे मित्रों, यह सच है कि कलीसिया वास्तव में नए नियम के कलीसिया के स्वरूप में नहीं है। परमेश्वर हमारा उद्धार करता है क्योंकि हम बुरे हैं और हम पापी हैं। अब हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 9 अध्याय उसके 1 पद में पढ़ते हैं, हे इसराइल सुन, आज तू यर्दन पार इसलिए जाने वाला है कि ऐसी जातियों को जो तुझ से बड़ी और सामर्थी हैं, और ऐसे बड़े नगरों को जिनकी शहरपनाह आकाश से बातें करती है, अपने अधिकार में ले ले। आज से अभिप्राय यह नहीं है कि उसी दिन, परंतु यह कि जिस दिन से प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करेंगे। तब हम आगे पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 9 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, उनमें बड़े बड़े और लंबे लंबे लोग अर्थात अनाक वंशी रहते हैं, जिनका हाल तू जानता है और उनके विषय में तूने यह सुना है कि अनाक वंशियों के सामने कौन ठहर सकता है। यहाँ पर परमेश्वर उस देश के बारे में जो जानकारी दे रहा है वह भेदियों द्वारा दी गई जानकारी से भी अधिक भयावह है। परमेश्वर उस देश को और वहाँ के निवासियों को जानता था, परंतु फिर भी परमेश्वर ने उनसे कहा था कि वे प्रवेश करें। उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था क्योंकि उन्हें परमेश्वर पर भरोसा नहीं था। मेरे मित्रों, परमेश्वर जानता था कि उस देश में भीमकाय लोग रहते हैं। वह हर एक परेशानी को जानता था, परंतु उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह उनके साथ जाएगा। मार्टिन लूथर ने कहा था, परमेश्वर साथ है तो वे एक ही मनुष्य बहुमत है। मेरे मित्रों, यदि आप परमेश्वर के साथ हैं तो आप बहुमत दल के साथ हैं। सत्य तो यह है कि मसीह समुदाय संसार में अल्पसंख्यक है, परंतु मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि जो संसार नहीं जानता है, परमेश्वर के साथ हम बहुसंख्यक हैं। परमेश्वर के साथ एक ही मनुष्य बहुसंख्यक है। व्यवस्था विवरण 9 अध्याय उसके 3 पद में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, इसलिए आज तू यह जान ले कि जो तेरे आगे भस्म करने वाली आग की नाई पार जाने वाला है वह तेरा परमेश्वर यहोवा है, और वह उनका सत्यानाश करेगा और वह उनको तेरे सामने दबा देगा, और तू यहोवा के वचन के अनुसार उनको उस देश से निकालकर शीघ्र ही नष्ट कर डालेगा। परमेश्वर वहां के वासियों को हटाने का उत्तरदायित्व लेता है। वह भूमि का स्वामी है, वह सृजनहार है और उसे अधिकार है। मित्रों, जब मैं किसी मुक्त विचारक से इस कृत्य की आलोचना सुनता हूं तो मन में आता है कि कहूं, चिरकुट चुप रह, तू और मैं यहाँ अकिंचन प्राणी है। परमेश्वर सर्वे सर्वा सृजनहार है, हम सृष्टि है। हम व्यवस्था विवरण 9 अध्याय उसके 4 पद में पढ़ते हैं, जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे सामने से निकाल चुके, तब यह न सोचना कि यहोवा तेरे धर्म के कारण तुझे इस देश का अधिकारी होने को ले आया है, किंतु उन जातियों की दुष्टता ही के कारण यहोवा उनको तेरे सामने से निकालता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने कहा कि वह वहां के वासियों को उनके अधर्म के कारण वहां से हटा रहा है। उसने यह नहीं कहा कि इसराइल की धार्मिकता के कारण वह उसे वहां बसाएगा। परमेश्वर अति स्पष्ट कहने वाला परमेश्वर है। व्यवस्था विवरण 9 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, तू जो उनके देश का अधिकारी होने के लिए जा रहा है, इसका कारण तेरा धर्म व मन की सिधाई नहीं है। तेरा परमेश्वर यहोवा जो उन जातियों को तेरे सामने से निकालता है, उसका कारण उनकी दुष्टता है, और यह भी कि जो वचन उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को शपथ खाकर दिया था, उसको वह पूरा करना चाहता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर इसराइल के उद्धार के निमित्त इसलिए नहीं आया कि वे बहुत भले मनुष्य थे। वह तो सदा से ही जानता था कि वे एक हठीली जाति है, परंतु उसने मिस्र में से उनकी पुकार सुनी। यदि आपको यह बोध हो कि आप पापी हैं और आपको एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, तो आपको उद्धार के लिए उसे पुकारना होगा, जिस प्रकार इसराइलियों ने उसे पुकारा, और वह आपकी आवाज सुनेगा। आप जानते हैं क्यों? इसलिए नहीं कि आप कुछ हैं, परंतु इसलिए कि मसीह आपके लिए मरा। यदि आप विश्वास में मसीह को ग्रहण करें तो वह निश्चय ही आपका उद्धार करेगा। हम व्यवस्था विवरण के पुस्तक 9 अध्याय उसके 6 पद में पढ़ते हैं, इसलिए यह जान ले कि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे वह अच्छा देश देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसे वह तेरे धर्म के कारण नहीं दे रहा है, क्योंकि तू तो एक हठीली जाति है। क्या आप यह जानते हैं कि परमेश्वर ने आपका और मेरा उद्धार इसलिए नहीं किया है कि हम में से कोई अच्छा है या हम में कोई अच्छाई है? हम तो पापी हैं। वह हमें मसीह यीशु के कारण बचाया है, हमारे अपने कारण नहीं। मेरे मित्रों, यदि आपको यह भ्रम हो कि परमेश्वर आपके उद्धार में कहीं न कहीं आपकी योग्यता को देखेगा, तो आपको निराशा ही होगी। परमेश्वर आपको जानता है और उसने कहा है कि आप में धार्मिकता अंश मात्र भी नहीं है। केवल मसीह के कारण वह आपका उद्धार करता है। परमेश्वर को हम में जो देखना है वह उसे मसीह में दिखाई देता है। यह कैसी अद्भुत बात है। आप व्यवस्था विवरण के इस अंश में यही देखते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार की आवश्यकता है कि आप परमेश्वर के द्वारा बचाए जाएं। मेरे मित्रों, आज मेरे लिए और आपके लिए भी यही एक अवसर है कि हम अपने पापों को मान लें, क्योंकि हम अपनी धार्मिकता और अपने अच्छे और भले कर्मों के द्वारा उद्धार की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है और यह बात स्पष्ट है कि उसने मसीह में हमारे लिए उद्धार के कार्य को पूरा कर दिया है। यदि आज उद्धार पाना चाहते हैं, चाहे मैं हूं चाहे आप, आइए हम परमेश्वर के निकटता में आए, अपने पापों को स्वीकार करें और उससे अपने जीवन में आने के लिए कहें ताकि मेरा उद्धार करें और उस महान शांति को जो मेरे जीवन के लिए आवश्यक है उससे प्राप्त करें। यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि निश्चित रूप से आज के इस वचन के द्वारा आपने अपने आत्मिक जीवन में आशीष को प्राप्त किया है। प्रभु आपकी सहायता करे और बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओं, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।